धौला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 12 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहूणं साहु वच्छायिरिये अरहंते वंदिऊण सिद्धेवी जे पंचलोग वाले वो छंबंधस सामित्तम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। षटखंडागम का यह तृतीय खंड है और इसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। इस आठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 73 पर हम आ गए। यहाँ नया सूत्र पढ़ेंगे 37 नंबर का। अभी तक हमने अलग अलग प्रकृतियों के बारे में कौन बंधक कौन अबंधक प्रश्नों के उत्तर में 23 प्रश्न संबंधी चर्चा की थी। अब यहाँ पूछते हैं तीर्थंकर नाम कर्म का कौन बंधक और कौन अबंधक है। ऊपर रह गया तीर्थयर नामस्य को बंधो को अबंधो। तीर्थंकर नाम कर्म का कौन बंधक और कौन अबंधक है। पहले में पहले समय दृष्टि उसका बंद करता है और बंध विच्छित्ति कहाँ होती है तो आठवें में होती है। तो हमें चौथे से लेकर आठवें के छठे भाग तक कहना है। अब ये बताएंगे यह सूत्र सुगम है। उसका उत्तर असंजद सम्मा इठी पहुड़ी जाव अपूवकर्ण पैठ व समा खवा बंधा। अपूवकर्ण धाये संखेजे भागे गंतुण बंधो वोचि जदि एदे बंधा अवशेषा बंधा। असंयत समय दृष्टि से लेकर अपूर्वकर्ण प्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक है। अपूर्वकरण काल के संख्यात बहुभागों को बिताकर बंध विच्छिन्न होता है, व्यच्छिन्न हो ना विच्छिन्न होता है, ये बंधक है। शेष जीव अबंधक है। कभी भी नहीं, यो अगर उसने यदि उसने शुरू किया है बांधना तो हर समय बांधता है, बीच बीच में बांधता है रुकता है ऐसा नहीं। अभी वो कौन शुरू करता है उसकी बात करें। सभी समय दृष्टि नहीं तो उसकी कंडीशंस जो है
देखो। हाँ। उनका ऐसा कहना आपका कि कभी भी बांधता है यानी चौथे में भी बांध सकता है, पांचवे में भी बांध सकता है, छठे में भी बांध सकता है, शुरुआत कहीं पर भी होती है।
शुरुआत कहीं पर, एक बार शुरुआत की तो बांधता ही रहता है। कभी भी इन्हें कभी भी शुरुआत कर सकता है और एक बार शुरुआत की तो उसको कंटिन्यूस बंधेगा। नहीं, तीर्थंकर का बंध होता है तो अधिक से अधिक तीन भव से ज्यादा भव नहीं होते उसके, वो बात आने वाली है। उसने तीसरे भव पहले प्रकृति बांधी थी, एक भव देव का करते यहाँ आगे फिर मोक्ष गए। श्रेणिक राजा ने मनुष्य में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, नारकी हुआ यहाँ आके मोक्ष गए। तीन भव से ज्यादा नहीं होते तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद तीन भव।
देखो 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 आप गड़बड़ कर रहे हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद कितना भला टाइम जावे उसमें चिंता नहीं है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बांधने को शुरू किया तो तीन भव में उस जीव को तीर्थंकर का उदय होगा ही।
देखो बंध से बंध का पुरुषार्थ नहीं करता जीव, तीर्थंकर प्रकृति बांधना इसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। बंध को अगर पुरुषार्थ कहेंगे तो मोक्ष को क्या कहेंगे? वो बनती है, वो शुभ भाव से बनती है, बस इतना ही।
देखो स्वरूप में
ना, शुद्ध भाव से नहीं बनती, शुद्ध भाव से कोई बंध नहीं। अभी बंध के कारण क्या देख रहे हैं? प्रत्यय क्या है? मिथ्यात्व से नहीं बनती है, समझ में? चौथे गुणस्थान से जो प्रत्यय है, प्रत्ययों से ही बंधेगी। शुद्ध भाव से बंध नहीं होता है, और हमको ये बंधनी चाहिए ऐसा जो अंदर लालसा होती है उसकी, तो बंध की इच्छा है, तो हमें बंध तत्व की भूल चल रही है अभी मान्यता में। बंध किसको अच्छा लगता है, उसको मोक्ष अच्छा नहीं लगता है। ख्याल में आई बात?
देखो मूल में आपकी गड़बड़ क्या होती है, जैसा स्वभाव है वैसा अनुभव होने लगा तो उसको बंध नहीं होगा, निर्जरा होगी बंधों की। और आप तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए पुरुषार्थ करने की बात कर रहे हैं, ये भूसा भरा हुआ है। ये जो तीर्थंकर प्रकृति, ये नाम कर्म की प्रकृति है, वो तो शुभ भाव से बंधेगी,
और वो सहज बनती है, इच्छा से नहीं बनती है। मैं तीर्थंकर प्रकृति परिणाम जो 16 कारण के, सभी 16 कारण भावना होती है, शुद्ध भाव नहीं। शुद्ध भाव के साथ जिसको राग भाव विद्यमान है, कि ये बात सभी जीव समझे, इस तरह से जो कोई वहां पर भाव चलता है उसके 16 बताए हैं 16 कारण भावना, तो उसके कारण, परंतु वो हर समय बंद रही है। ख्याल में है ना? अभी जो तीर्थंकर प्रकृति बांध के आए हैं और चक्रवर्ती हुए हैं या ऑर्डिनरी राजा हुए, तो युद्ध में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उस समय बंधेगी कि नहीं बंधेगी? क्योंकि हर समय बंध रही है ना, उसमें कोई रुकावट नहीं। हाँ, जो कोई दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले हैं, बस उनके अंतर्मुख तक रुकती है, अदरवाइज नहीं। उपयोग लगातार अंदर नहीं होता, शुद्ध उपयोग भी अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता। समझ में आती है ना? शुद्धोपयोग के काल में भी अश्विन भाई अभी रहने दो। देखो
आपका क्या हो रहा है, कुछ पहले सुना हुआ है वो अभी बाहर आ रहा है। पहले ये देखो, बंद होना ये खोटी बात है। स्वामी जी भी कितने बार कहते थे तीर्थंकर गोत्र बांधना ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बंध है और हमें निर्बंध होना है ना। तो आप तो कहेंगे अरे वो तो तीर्थंकर बनेगा, अरे पर वो तो बंध को अच्छा मान रहे हैं, तो बंध तत्वों में भूल हो रही है, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसको तो हो गया।
इन्हें हमें तो देखो तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर के प्रति राग होना बात अलग है, और तीर्थंकर प्रकृति बांधना वो पुरुषार्थ कर रहा था, ये मान्यता जो है। पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष का पुरुषार्थ है ना, कि शुभ भाव का पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात है। तो इन्हें वो बंध के अभाव की बात है, बंध के जो हमने देखे, बंध क्यों होता है? कारणों से होता है, बिना कारण नहीं होता है। कौन से कारण? शुद्ध भाव से होता है क्या? यहाँ कहीं पर भी प्रत्यय में शुद्ध भाव को नहीं लिया है। अगर शुद्ध भाव से भी बंध होने लगा तो फिर वो बंध टलेगा ही कहीं? ख्याल में आती है बात? ये 7 तत्व संबंधी जो मान्यता है, बहुत वो तो बहुत सबसे महत्व का विषय है। मान्यता में कहीं भी गड़बड़ चलती है तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। पेज नंबर अभी 73 पर हम आए हैं, 38 नंबर का सूत्र हमने पढ़ा, वहां लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं। असंयत समय दृष्टि से लेकर तीर्थंकर प्रकृति की बात हो रही है। अपूर्वकरण प्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बंधक है। अपूर्वकरण काल के संख्यात भूभागों को बिताकर बंध विच्छिन्न होता है, ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है। ना ही नीचे के गुणस्थानों में बंध है और ना ही 8वें के ऊपर उसका बंध है। उदय 13वें और 14वें में, बंध 4थे से 8वें तक। कल में आई बात? देखो यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि वह स्वामित्व बंध अधवान और बंद विनष्ट स्थान का ही प्ररूपण करता है। चौहत्तर प्रश्न पर आए। इसी कारण से इसके द्वारा सूचित अर्थों का वर्णन करते हैं। अभी जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा 23 प्रश्न, उस संबंधी अपनी चर्चा चलेगी। देखो तीर्थंक, हाँ वर्णन, वर्णन न ऑर्डिनरी चाहिए, वर्णन वर्णन हुआ है पहली लाइन, हिंदी पहली लाइन, पेज नंबर 74। हाँ, और है के बाद फुल स्टॉप, वर्णन करते हैं। देखो तीर्थंकर नाम कर्म का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय। हमने देखा था ना बंध चौथे से आठवें तक है और उदय तेरहवें चौदहवें में है, क्योंकि अपूर्वकरण के छठे सप्तम भाग के अंतिम समय में। छठा सप्तम भाग यानी सात भागों में से छठा भाग, यानी हमारी भाषा में छठे भाग के अंतिम समय में। ये छठे सप्तम लिखने से घोटाला हो सकता है ना, हमने देखे थे आठवें गुणस्थान के सात भाग करेंगे तो पहले भाग के अंतिम समय में कौन किसका विच्युति होती है,
निद्रा
प्रचला की, और छठे भाग के अंतिम समय में इन
30
प्रकृतियों की। यहाँ तीर्थंकर के अकेले की बात पूछ रहे हैं, अंतिम समय में बंध के नष्ट हो जाने पर तीर्थंकर नाम कर्म का संयोग केवल के प्रथम समय में उदय का प्रारंभ करके, उदय कहाँ से कहाँ तक है, तेरहवें के पहले समय से, अयोग केवल के अंतिम समय में उदय का विच्छेद पाया जाता है। विच्छेद कहाँ तक है, क्योंकि पहले से उदय रूप नहीं थी, उदय को भी बिगिनिंग है तेरहवें के पहले समय से चौदहवें के अंत समय तक। इसका बंध परोदय से ही होता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के उदय में उसका बंध होगा क्या, अरिहंत भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो नहीं है, तो बंध जब हो रहा था उसका उदय नहीं था, इसलिए क्या कहेंगे परोदय से ही बनते, क्योंकि जहाँ तीर्थंकर कर्म का उदय संभव है, संभव यानी होता है, उन संयोग केवली और अयोग केवली जिनों में तीर्थंकर का बंध पाया नहीं जाता, तीर्थंकर यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसका निरंतर है, क्योंकि अपने कारण के होने पर काल क्षय से बंध का विश्राम नहीं होता, यानी बंध रुकता नहीं है। यानी जैसे प्रतिपक्षी प्रकृतियां है, उसका अपना काल समाप्त होता है अंतर्मुर्त, फिर प्रतिपक्षी बनती है, ऐसे इसमें नहीं है, इसका बंध तो लगातार निरंतर चलता रहता है। हाँ, जहां बंध विच्छित हुई तभी बंध रुकेगा, या जो दूसरे तीसरे नरक के सम्मुख है, जिन जीवों ने पहले नरकायु बांधी है, बाद में सम्यक दृष्टि हुए हैं, परंतु क्षायिक नहीं हुए, वो तो वेदक सम्यक दृष्टि है, तो नरक में जाने के पूर्व में अंतर्मूर्त पहले उनका सम्यक तो नष्ट होगा, मिथ्या तो में जाएंगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकेगा, वहां नरक में उत्पन्न होते ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही सम्यक तो भी शुरू होगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी चालू हो जाएगा, फिर बाद में कभी वो रुकेगा नहीं, पूरे वहां की जितनी आयु है पूरे समय तक वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। वहां से माँ के गर्भ में आएंगे तभी अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू ही है, अभी कोई रुकावट नहीं है, बस आठवें गुणस्थान में जाके बंध विच्छिन्न होगा, ऐसा वो लगातार है। देव में जाने वालों को तो बीच में कोई रुकावट ही नहीं है, यहाँ मनुष्य में आरंभ किया बंध, देव में गए वहां पर भी बंध कंटिन्यूस हो रहा है, मनुष्य में आए और फिर तीर्थंकर हो जाएंगे, जो आठवें गुणस्थान तक बंध है। हाँ, जो क्षायिक समय दृष्टि जैसे श्रेणिक राजा के लिए, तो वो सम्यक तो सहित गए वहां पर, तो उनका बंध रुका नहीं है, अंतिम समय मरण के अंतिम समय तक यहाँ बंध किया, वहां जाते ही पहले समय से विग्रह गति में भी वो बंध कर रहे, उनका बंध रुकता नहीं बीच में, चूंकि नरक में गए तो संकलेश परिणाम में मरण हुआ था ना, कपोतलेशा में तो हुआ है पहले नरक में जाते समय, तो फिर भी उनका सम्यक तो नहीं छूटता है, देखो अभी हम देख रहे हैं, वो बंध इसका परोदय से होता है वो हमने देखा था, बंध इसका निरंतर है ये भी पढ़ा था, क्योंकि काल क्षय से बंध का विश्राम नहीं होता, यहां तक अपना हुआ था। असंयत समय दृष्टि इसे दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं, यानी चौथे गुण स्थान वाले को दो गतियां बनती है, जो मनुष्य है तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे तो देवगति का बंध कर रहे, और देव या नारकी मनुष्य गति के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे। जो यहाँ से बंधना चालू किया ना वही बांधेंगे, वहां कोई नए से बंध प्रारंभ नहीं करेंगे। भले देव है वो तीर्थंकर के समोसरण में जाते हैं, परंतु वहां बंध का प्रारंभ उनका नहीं होगा। यहां से जिन्होंने बंध शुरू किया है वही देव में बंध करेंगे, ये उसका अर्थ होता है। और ऐसे दो चार नहीं, असंख्यात जीव स्वर्गों में है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। प्रत्येक नरक में असंख्यात जीव है तीसरे नरक तक कि जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं। यहाँ बांधे तो गिने चिने लोग बांधते थे मनुष्यों में, और वो मरकर गए और वहां सागरों की आयु है तो वहां उनका एक के बाद कोई ना कोई जाता रहता है, तो वहां उनकी संख्या असंख्यात हो जाती है, और वो सारे यहाँ आकर नियम से तीर्थंकर होने वाले हैं। 24-24 करके बुकिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ के बाद 24 की है, यहाँ 24 हो गए। अरे पर विदेह क्षेत्र में तो हर पूर्व कोटि की किसी की मैक्सिमम आयु पूर्व कोटि की होती है, और वहाँ देव और नरकों में तो सागरों की आयु है। अगर सागर छोड़ो, पल्ल्य के भी असंख्यात विभाग में भी असंख्यात पूर्व कोटियाँ होगी कि नहीं? असंख्यात करोड़ वर्ष होते हैं, हो गए असंख्यात करोड़ वर्ष होते हैं, ऐसा तो ये आता है ना। क्योंकि पल्ल्य भी बहुत बड़ी संख्या है ना, वहां तो एक के बाद एक चालू ही रहते, 20 तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो 160 होते हैं विदेह क्षेत्र में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा? अरे एक पूर्व कोटि कितनी छोटी आयु है, और अवसर्पिणी उत्सर्पिणी यहाँ है, पर हमारे अवसर्पिणी उत्सर्पिणी 20 कोड़ा कोड़ी सागर बीत जाते, अरे यहाँ जाते हैं, वहां तो असंख्यात जाते हैं। देखो जब तक यहाँ 24 हो रहे थे, वृषभ से लेकर महावीर तक करोड़ एक करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर करीबन, थोड़ा कम था फिर हम कोड़ा कोड़ी सागर कहेंगे, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर की बात छोड़ो, एक सागर में वहां असंख्या तीर्थंकर हो चुके एक के बाद एक। जो सौधर्म हम इंद्र कहते हैं उसकी आयु 2 सागर की, 2.5 सागर की जो है, तो उसमें वो कितने कल्याणक अटेंड करेगा असंख्यात, ख्याल में आते ना? क्योंकि वो सागर और पल्ले का माप इतना बड़ा है कि उसके असंख्य, यानी उसमें तो असंख्यात कितने तीर्थंकर हो जाएंगे एक के बाद भी तीर्थंकर। क्योंकि सागरों का माप बहुत बड़ा है, उसके सामने पूर्व कोटि कुछ नहीं, उसके सामने कुछ नहीं, ये बात कहे। क्योंकि हम यहाँ वृषभ से लेकर महावीर तक गिनते हैं, उतने काल में वहां कितने तीर्थंकर हुए होंगे। हाँ, और ये हमारा एक भरत है, भरत भी 5 है, ऐरावत भी 5 है। हाँ बोलो, कुछ प्रश्न है क्या आपका?
देखो बात ऐसी है, विदेह क्षेत्र में मान लो,
रुको यहाँ प्रश्न तो चल रहे,
मानने के लिए बता रहा हूँ, 100 साल में एक तीर्थंकर हो रहे, और आपने यहाँ इधर 100,000 साल के बाद होंगे, तो 100 साल के बाद अगर होते हैं तो 100,000 वर्ष में कितने होंगे? बहुत होंगे ना, अभी गिने जो भी हिसाब लगता हो।
देखो यहाँ आदिनाथ हुए ना पहले, उसके बाद दूसरे कितने साल के बाद हुए? 50,00,000 करोड़, यानी 1 कोड़ा कोड़ी का आधा, समझ में आती है बात? सागर 50,00,000 करोड़ सागर वर्ष नहीं, 50,00,000 करोड़, और हम पूरा महावीर तक कितना कहते हैं 1 कोड़ा कोड़ी सागर, और यहाँ उसका आधा 50 लाख करोड़ सागर दो तीर्थंकरों के बीच में, तो उसमें कितने केवली हुए होंगे कि नहीं? हाँ, तो सामान्य हुए होंगे। हाँ, उसमें बांधा नहीं आता है। तीर्थंकर भी उतने होंगे, उतने काल में वहाँ कितने तीर्थंकर हुए होंगे? यहाँ दो ही हुए, उस काल में वहाँ कितने असंख्य?
सिर्फ भरत क्षेत्र की बात सोचते हैं, यहाँ विदेह क्षेत्र की बात कर रहे हैं।
विदेह क्षेत्र में तो हमेशा तीर्थंकर है,
विदेह क्षेत्र में तो चौथा ही काल रहता है और हर एक करोड़ पूर्व के बाद दूसरा तीर्थंकर होता ही है।
यानी जहाँ एक है वहाँ की बात है, ऐसे 160 जगह अलग अलग चल रहे एट ए टाइम, और जिनकी जहाँ की जो कभी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 160 कुछ भी संख्या हो सकती है इन बिटवीन, तो वहाँ तो निरंतर चल रहा है, कभी ऐसे बीच में गैप तो नहीं होगी। ये बात ख्याल में नहीं आती है ना। मैंने 5 विधेय कहेंगे हम, परंतु हाँ, परंतु हम, मैं हमेशा 24 तीर्थंकरों की पूजा पढ़ती हूँ, वृषभादि महावीर पर्यंत, हमेशा मुझे विचार आता है, अरे हम तो ये 24 गिनते तो वहाँ तभी उस कितने असंख्य तीर्थंकर हुए होंगे, उन सबको मेरा नमस्कार, ऐसा। हाँ, हर एक में 24 होते हैं, पर वो भी अवसर पिणी में 10 कोड़ा कोड़ी में 24, और फिर अवसर पिणी में 24 अलग, यानी पूरे कल्प काल में 48 हो गए। वो यहाँ की बात है, भरत और ऐरावत की बात है, तब तक विधेय में तो कंटिन्यूएशन चल ही रहा है, वहाँ तो कांस्टेंट है ना। हाँ, काल इतना बड़ा है वो पल्लयों का, और इसलिए उसकी असंख्यातपना ख्याल में नहीं आती, मैग्नीट्यूड उसकी है ना, 24 और 24 अवसर पीणी और उत्सर पीणी। नहीं, एक अवसर पीणी उत्सर पीणी की बात है, जैसे हमारे हाँ, अजितनाथ जब यहाँ थे दूसरे अपने, तब सर्वत्र एक एक थे मैक्सिमम, तो एट ए टाइम 170 तीर्थंकर थे, 170। हाँ, अभी शोभा बेन का कुछ प्रश्न चल रहा है, यहाँ प्रश्नोत्तर हो रहे थे हमारे। हाँ बोलिए, आपका प्रश्न क्या है?
हाँ, वो जो अभी आप बोल रहे थे ना, ये असंख्यात तीर्थंकर हो चुके हैं,
हाँ,
160 क्या
एक टाइम में 170 होते हैं यहाँ के और वहाँ के मिलकर? एट ए टाइम मैक्सिमम 170 हो सकते हैं, परंतु वहाँ तो एक के बाद एक होते ही रहते हैं, पूर्व कोटि हो गई, एक तीर्थंकर की आयु पूरी हो गई, कोई अन्य वहाँ फिर वो तीर्थंकर पद में आ जाते हैं, यानी वो तीर्थंकर मुफ्त चले गए, दूसरे कोई तीर्थंकर पद का इनका उदय चालू हो जाता है। प्रकृति विधेय क्षेत्र में हमेशा बना रहता है, जहाँ मिनिमम 20 कहते हैं वहाँ एक सीमंदर हुए, उसके बाद दूसरे वहाँ उनका नाम सीमंदर ही रहता है, वही उसी नाम से। अभी आगे, हाँ, हाँ, एक के बाद असंख्यात, क्योंकि वहाँ तो चलता ही रहता है ना, हमारे जब तक 24 हुए वहाँ असंख्यात होते हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ, पर उनका भी जो चौथा काल चलता है ना, हाँ, क्योंकि बीच में उसी समय में वो आगे पीछे होगी ना, उसमें एग्जैक्ट उसी समय में वहाँ हो गया ऐसा नहीं है, परंतु वहाँ पर भी चौथा काल चलेगा, वो चौथा काल चलेगा तभी के बाद। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्या क्या
क्षेत्र में?
हाँ,
उसमें बोलो, भरत क्षेत्र में चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं,
हाँ,
शुरुआत से,
हाँ,
तो उसका धर्म का हम लोग देखते हैं पांचवे काल तक, पांचवे के अंत तक
धर्म है ना, पांचवे काल में, और पहले भी धर्म तो था, तीर्थंकर नहीं होते तो धर्म तो है ना। अरे क्षायिक सम्यक दृष्टि आते हैं ना तो वो भूमि में
छठे काल में नहीं होते ना,
क्योंकि देखो समय दर्शन प्राप्त होता है ना, धर्म है कि नहीं वहाँ पर
है।
तो पांचवे काल के अंत तक तो धर्म है, बाद में कुछ साल के लिए लोक हुआ 21,000 वर्ष तक, वो कुछ नहीं है। ऐसे भी अभी हुंडाव सर्पिणी है, बीच बीच में कितने पल्ले के असंख्यात विभाग तक, असंख्यात वर्षों तक धर्म का लोक हुआ था बीच में, वो धर्म और शांति के बीच में ऐसा आता है ना। धर्म का लोप है ना, कोई हाँ कोई मुनि भी नहीं हो, ऐसे हुए नहीं होगे बीच में। हाँ धर्म का लोप ऐसा आता है, यानी जैसे अन्यत्र मिलेज की प्रवृत्ति होती वैसे यहाँ प्रवृत्ति होती होगी, उसके बारे में ज्यादातर कुछ वर्णन नहीं आता है।
पर हम लोग देखते हैं चौथे काल में शुरुआत में खुलकर होते हैं,
चौथे काल में नहीं होते, तीसरे काल के अंत में होते हैं, क्योंकि वो भोग भूमि से कर्म भूमि में भौगोलिक जो कोई परिस्थितियाँ चेंज हो गई है। कल्प वृक्ष से सब मिलता था, अब वो मिलना बंद हुआ है, यानी वो एकदम एट ए टाइम एक पॉइंट पर बंद नहीं होता है, चेंजेस होते 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 तो एडजस्ट करने की बात वो सब सिखाते हैं खुलकर।
तो जब धर्म का लोप हो जाता है चौथे काल में, हम आपने बताया के बीच में
वो तो हुंडावसर पीणी में होता है, असंख्यात अवसर पीणी के बाद कोई एक अवसर पीणी में इस बार ये ऐसा हुआ था, होता ही ऐसा रूल नहीं है।
नहीं तो मेरा क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे धर्म का लोप हो जाता है हुंडावसर पीणी में तो वापस खुलकर आए, खुलकर
की क्या जरूरत है। देखो चौथा काल है यहाँ पर, कुलकर की क्या बात है वहाँ पर, यहाँ तो अभी कोई सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता, बीच में कोई ऐसा उपदेश ऐसा कुछ रहा नहीं है, इसलिए धर्म का लोप कहा। प्रवृत्ति ऐसी लोगों की होती होगी। हाँ पांचवे में कुलकर होते हैं, पांचवे काल में पांचवे में हो गए, पर अभी वो कैसे अभी शायद हो सकते हैं ना कि पहला का सादी मिथ्या दृष्टि वगैरह। हाँ ऐसा ही होगा, मुझे भी प्रश्न आते हैं कि वहाँ धर्म की शुरुआत कैसी होगी, तो ऐसे कोई सादी मिथ्या दृष्टि आते होंगे या कोई सहज रूप से कोई निमित्त बनता होगा किसी को।
अरविंद
भाई का उत्सर्पिणी की बात है, उत्सर्पिणी में कुलकर पांचवे के अंत में हो। हाँ वो क्या करते हो गए ऐसा है, नहीं उसका ये वर्णन है कि अभी तो कुटुंब पद्धति है, पांचवे के अंत तक तो ये तो वो भी डिरेलमेंट तो चालू हो गई है, तो ऐसा चलेगा, यानी जो शादी करके कुटुंब वगैरह व्यवस्था ये भग्न होने वाली है। अब उल्टा काल आएगा, तभी भी ये कुटुंब व्यवस्था नहीं थी शुरुआत में, तो वो सिखाएंगे, इतने की बात आती है। अभी नाम अभी जो हुए उसके नाम हो गए ना, अभी वर्तमान की पांचवे के शुरुआत में नहीं, कुलकर पांचवे के लास्ट लास्ट में उनके अभी वो कोई अभी उन्होंने वही प्रश्न पूछा, अभी कोई अवधि ज्ञानी होते होंगे या कुनी जिसको विभंग ज्ञान कहेंगे या कोई देव जो कुछ उपदेश बनता होगा।
इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा ना कि जब यहाँ पे चौथे काल में धर्म का लोप हो जाता है तभी।
अरे यहाँ तो समय दृष्टि तो उत्पन्न होगी कि नहीं, तीर्थंकर इटसेल्फ भी उत्पन्न हो जाए, क्षायिक समय दृष्टि भी उत्पन्न हो गए कितने यहाँ पर, उसमें तो कोई चौथे काल में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जब चौथा काल है तो देव समय दृष्टि यहाँ आते आई यानी जन्म तो ले सकते है, और पूर्व भव के वैसे भी संस्कार जाति स्मरण बहुत सारी बातें होती है ना। हाँ वहाँ समय दृष्टि उत्पन्न हो गए वो बात अलग है, चौथा काल तो चल ही रहा है यहाँ पर, और ऐसा ऐसा लोप यानी एकदम सा अन्य जैसे छठे काल जैसी प्रवृत्ति तो नहीं है। अब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, देखो देखो ये पेज नंबर 74, यहाँ नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन है। असंयत समय दृष्टि से दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का नरक व तिरंज गतियों के बंध के साथ विरोध है। देखो, नारकी बांधते ऐसा नहीं बांधते ऐसा नहीं कहा, पर जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है उस समय वो नरक गति को नहीं बांध रहा है, न ही तिरंज गति को बांध रहा है। देखो, क्षणिक राजा ने पहले नरकायु नरक गति वगैरह का बंध किया था, बाद में सम्यक तो हुआ, उनको सम्यक हुआ तब से क्या बांध रहे थे, देवगति। आयु तो बन चुकी है, अभी उसमें कोई डिफरेंस परिवर्तन नहीं होगा, पर नरकायु पड़ी है बंधी हुई और देवगति बांध रहे कंटिन्यूअस। फिर सम्यक दृष्टि हुए, क्षायिक समय दृष्टि हुए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया, यानी देवगति बांधते 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 मरकर नरक में पहुंचे हैं। नरक में जाते ही मनुष्य गति के साथ तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू किया, अभी वो मनुष्य गति और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। वहां से आएंगे यहाँ माँ के गर्भ में विग्रह गति से ही देवगति और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे। यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंध या तो मनुष्य गति युक्त होता है या देवगति युक्त होता है। बांधेंगे कौन? मनुष्य बांधेंगे, देव और नारकी बांधेंगे, वो तो स्वामित्व में आएगी बात। तिर्यंच बांध नहीं सकते। हाँ, तिर्यंच जो है, देखो क्षायिक समय दृष्टि मरकर तिर्यंच हो सकता है, जो पहले जिन्होंने तिर्यंच आयु बांधी हो, पर ऐसा पहले जिसने मनुष्य आयु भी बांधी है, देखो, और तिर्यंच आयु भी बांधी है, वो अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करेगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति नरकायु बांधी हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद या तो देव में जाएगा या नरक में जाएगा और मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा, वो भोग भूमि में नहीं जा सकता है। नरक में जा सकता है, भोग भूमि में नहीं जा सकता, ये कहना चाहते। देखो अभी हम पढ़ेंगे इसको।
श्री का आचार्य जब भी वरण के सम्मुख विख्यात में चले गए,
हाँ क्षायिक समय दृष्टि थे, अन्य दूसरे तीसरे में जाने वाले जो है वेदक सम्यक्त्व के साथ वो नरक मिथ्यात्व में जाते हैं, ये तो क्षायिक थे ना। पहले नरक में तो कोई वेदक सारे नियम से क्षायिक होते हैं, पहले नरक में जाने वाले तीर्थंकर प्रकृति वाले, यानी जैसे दूसरे तीसरे में वेदक। हमारे बहुत प्रश्न चला था और इसका उत्तर भी हमको मिला था, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा था वहां पर, दूसरे और तीसरे नरक में ही वो तो पहले नरक में ऐसे कोई नहीं जा सकते कि वेदक के साथ गए और समय तो छूटा और पहले नरक में गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी तीर्थंकर की बंध के साथ की बात है। देखो, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का नरक व तिरंज गतियों के बंध के साथ विरोध है। उपरिम जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि मनुष्य गति में स्थित जीवों के तीर्थंकर प्रकृति के बंध का देवगति को छोड़कर अन्य गतियों के साथ विरोध है। यानी जो मनुष्य जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है तो देवगति का ही बंध करे, देवगति की वो 28 प्रकृतियां प्लस तीर्थंकर की 29 प्रकृतियां बंधेगी, और कोई जो आहारक का बंध करेंगे तो 29 में और 2 एक्स्ट्रा हो जाएगी। और देव जब बांध रहे तो मनुष्य गति का रेगुलर बंध कितने का होता है, 29 का बंध होता है, उसके साथ और एक जुड़ेगी तो 30 का बंध होगा उनका, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रकृतियां। तीन गतियों के अभी बांधने वाले कौन है वो बता रहे, तीन गतियों के असंयत समय दृष्टि जीव इसके बंध के स्वामी है, क्योंकि असंयत समय दृष्टि में तीनों गति को इंक्लूड किया, बाकी पांचवे के ऊपर बांधने वाले तो मनुष्य गति के ही है। या हमेशा संयता संयत में कोई प्रकृति बनती देवगति वगैरह तो हम देवगति के जीव लेते हैं, यहाँ पांचवे वाले में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले पांचवे गुणस्थान वाले कौन है, मनुष्य ही है, पांचवा छठा सातवा आठवा ये स्वामी में लेना, क्योंकि तिर्य गति के साथ तीर्थंकर के बंध का अभाव, यानी तिर्यंच जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं कर सकते। शंका, तिर्य गति में तीर्थंकर कर्म के बंध का प्रारंभ भले ही न हो, क्योंकि वहाँ जिनों का अभाव है, जिनों का यानी तीर्थंकरों का, क्योंकि इसके लिए रूल क्या है, तीर्थंकर के पादमूल में ये बनती है। किंतु जिन्होंने पूर्व में तीर्यकायु का बांध लिया, तीर्यकायु को बांध लिया है, पूर्व में बराबर लिखो, उनके पीछे सम्यक्त्वादी गुणों के प्राप्त हो जाने से, जैसे जो हम देखते तीर्यंचायु बांधने के बाद भी किसी भी आयु का बंध क्यों न हो, सम्यक्त्व प्राप्त करने में तो कोई बाधा नहीं है। तो जिन्होंने तीर्थंकर प्राप्त हो जाने से तीर्थंकर कर्म को बांध कर पुनः तीर्यंचों में उत्पन्न होने पर तीर्थंकर के बंध का स्वामीपना माना जाता है, जिसे क्षायिक सम्यक दृष्टि है। पहले मिथ्यात्व में थे, तब भोग भूमि की तीर्यंचायु बांधी, भोग भूमि ने तीर्यंचायु बांधी, और फिर बाद में उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त किया और बाद में क्षायिक किया, तो सम्यक्त्व के साथ वहां गए, ऐसा ये कहना चाहता है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके वहां जाने दो ना क्षायिक के साथ। समाधान, इसके उत्तर में कहते कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पूर्व में तीर्यंच व मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, वो तीर्यंच बराबर लिखो, उन जीवों के बांधी गई नरक व देव आयु के समान तीर्थंकर कर्म के बंध का अभाव है। क्या कहना चाहते हैं, जिसने देवायु बांधी है या नरकायु बांधी है, उसके तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है, परंतु जिसने मनुष्यायु भी बांधी है, ऐसे मनुष्य को वो देव तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला बाद में मनुष्यायु बांधेगा, उसका तो निषेध नहीं है, परंतु जो बद्धायुष्क जो मनुष्य है, जिन्होंने पहले मनुष्यायु बांध ली ऑलरेडी, अभी उसको सम्यक तो होकर वो क्षायिक होगा तो जाएगा क्षायिक के साथ भोगभूमि में, वो अभी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकता, ये रूल है उसका। फिर से, जिन्होंने पहले मनुष्यायु बांधी है या तीर्यंचायु बांधी है, जिस मनुष्य ने, अभी वो मनुष्य तीर्थंकर के पादमूल में गया, उसने ये तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, इसे उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी मनुष्यायु की सत्ता है, वो तीर्थंकर प्रकृति उसके नहीं बंधेगी। जैसे वो क्षायिक हो सकता है और क्षायिक लेके वहां भोगभूमि का मनुष्य हो भी सकता है, यानी होगा, वो मनुष्यायु बांधी है और क्षायिक किया है तो भोगभूमि का मनुष्य होगा, परंतु उसके तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन सकती, क्योंकि भोग भूमि में यह बनती नहीं है। अब फिर शंका पूछते, यह भी कैसे संभव है, उसका समाधान करते हैं 75 पृष्ठ पर। क्योंकि जिस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया गया है, कौन से भव वाले प्रारंभ करते हैं, तो मनुष्य ही करते हैं। कौन से मनुष्य, कर्म भूमि के मनुष्य, उससे तृतीय भव में, यानी उसके बाद एक देव या नारकी का भव करके फिर मनुष्य होकर मोक्ष जाता है, यानी तीर्थंकर होता है। तृतीय भव में तीर्थंकर प्रकृति के सत्वयुक्त जीवों के, यानी जिन्होंने बांधा है उनकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है और वो बांध भी रहे, उन जीवों के मोक्ष जाने का नियम है। परंतु तीर्यंचार मनुष्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यक दृष्टियों की देवों में उत्पन्न न होकर देव नारकियों में उत्पन्न हुए जीवों के समान मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होती, उत्पत्ति नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं, तीन भाव का नियम है ना, तो यहां से कोई मनुष्य होकर वहां चला जाए और फिर वापस आकर मनुष्य होकर मुख जाए, कहते ऐसा नहीं होता, क्योंकि भोगभूमि के जीव वहां से मरकर देव में ही जाते हैं, मनुष्य में नहीं आते, ये नियम बता रहे यहां पर। जिससे कि तीर्यंच व मनुष्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यक दृष्टियों की तृतीय भव में मुक्ति हो सके। इस कारण तीन गतियों के असंयत सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के स्वामी है, यह बात सिद्ध होती है। यानी चौथे गुण स्थान के लिए तीन गति कहे, तीन गति संयुक्त, नहीं बांधने वाले तीन गतियों के असंयत सम्यक दृष्टि, क्योंकि आगे वाले जो है सारे मनुष्य ही है। विशेषार्थ, यहाँ शंकाकार का कहना है कि जिस जीव ने पूर्व में तीर्यगायु और मनुष्यायु का बंध किया लिया है, और यानी या तिर्यगायु या मनुष्यायु, वह यदि पश्चात सम्यक्त्वादि गुणों को प्राप्त कर, सम्यक्त्वादि यानी सम्यक्त्व, क्योंकि आदि में तो कुछ मनुष्यायु तिर्यगायु बांधी है, तो अभी कुछ पांचों गुण स्थान तो नहीं होगा, प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करे और तत्पश्चात मरण को प्राप्त होकर तीर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न हो, तो वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध का स्वामी क्यों नहीं हो सकता, यह प्रश्न है। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं, यह संभव नहीं है, कारण कि तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के भव से, बांधन के नहीं, बांधने के, और वो तीर्थंकर ती ह्रस्व हुआ, तीर्थंकर ती दीर्घ पाइजे ना, ये तीर्थंकर प्रकृति ह्रस्व हो गया, ती दीर्घ करना, बांधने के भव से तृतीय भव में मोक्ष जाने का नियम है, यानी पांच छह भव पहले तीर्थंकर प्रकृति बांध के रखता है, ऐसा नहीं है, तीन भव का नियम है, आपको लगा ना वो मारीची ने तभी बांधी की रखी थी, ऐसा नहीं होता है। नहीं, अभी उनका प्रश्न था, सिंह के भव में उनको सम्यक तो हुआ, उसके बाद दस भव के बाद तो मोक्ष गए, उन तीर्थंकर प्रकृति तो तीसरे भव पहले ही बांध देते, मनुष्य ने बांधी, देव हुआ और फिर मनुष्य होकर तीर्थंकर हुए, महावीर हुए, परंतु यह बात उक्त जीवों में नहीं बन सकती, क्योंकि तिर्यगायु और मनुष्यायु को बांधने वाला जीव द्वितीय भव में तिर्यंच और मनुष्य होकर समय दृष्टि होने से तृतीय भव में देव ही होगा, मनुष्य नहीं। अभी समय दृष्टि होने से नहीं, भोग भूमि वाला है तो नियम से वो तो मिथ्या दृष्टि भी देव में जाएगा, ये नियम है, अतः वो कोई भी दूसरे भव का तिर्यंच और मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति के बंध का स्वामी नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ वहां गया है तो उसको भोग भूमि का वो शायद समय दृष्टि होना चाहिए था, यानी द्वितीय भाव में भोग भूमि का लिखना है, और वहां के सम्यक्त्व दृष्टि की मिथ्या दृष्टि भी देव में जाएंगे, इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति है इसलिए उसको सम्यक दृष्टि लिया। आगे बढ़ेंगे, इसलिए क्या कहते, कोई भी दूसरे भव का तिर्यंच और मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति के बंध का स्वामी नहीं हो सकता। दूसरे भव का मनुष्य तिर्यंच यानी जिस तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद मनुष्य और तिर्यंच होकर फिर डायरेक्ट मनुष्य होकर मोक्ष जाए, संभव नहीं है। तीन भव का तो नियम पहले ही बता चुके, अब उसका सादी है कि अनादि है, कि ध्रुव है कि अध्रुव है, तीर्थंकर प्रकृति का सादिक व अध्रुव बंध होता है, क्योंकि पहले से तो बंध है, वो ध्रुव बंधी तो है ही नहीं है, बंध कभी ना कभी शुरुआत हुई थी तो सादी है उसका, और फिर उसके बंध विच्छित तो नियम से होने ही वाली है, क्योंकि उसके बंध कारणों के सादी शांतता देखी जाती है, उसके बंध के कारण भी सादी शांत है, इसलिए तीर्थंकर कर्म के प्रत्ययों के निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। अभी क्यों बनती है उसकी बात है, उसके लिए भी बंधे के कारण होंगे कि बिना कारण शुद्ध भाव से बंधेगी कि नहीं बंधेगी, अभी बताओ, नहीं बंधेगी, अभी नक्की हुआ ना, प्रश्न पूछे यहाँ सूत्र में, कदी ही मेरे वो डबल प्रिंट हुआ है, कदी ही कारणे ही, आगे क्या है, जीवा जीवा तिथयर नाम गोदम कम्मम बंधंती, इसके ऊपर उल्टी लाइन प्रिंट हुए एक्चुअली, कितने कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं, ये तीर्थंकर बराबर लिखना और है भी लिखना बराबर, प्रश्न चिन्ह शंका। हाँ, जीव बांधते हैं, है के ऊपर अनुस्वार भी चाहिए, ये तीर्थंकर नाम और गोत्र लिखा ना, तो इसलिए स्वामी जी भी बहुत कहते तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं, तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं, उसको गोत्र क्यों कह रहे हैं, नाम कर्म की प्रकृति तो गोत्र क्यों कह रहे, ये पूछेंगे अभी। देखो शंका, नाम कर्म के अवयभूत तीर्थंकर कर्म की गोत्र संज्ञा कैसे संभव है? यानी ये तो स्वामी जी ने अपनी ओर से नहीं निकाला है, ये पद्धति है उसको तीर्थंकर गोत्र कहने की भी। इसका रेफरेंस लिखा होगा ना आपने कि नहीं? पेज कौन सा है ये? 76। पहले लिखा है ना आपने? हाँ आता है और चर्चा भी करते हैं। उसका समाधान, यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि उच्च गोत्र के बंधका अविनाभावी होने से तीर्थंकर कर्म को भी गोत्रत्व सिद्ध है और वो देवगत यानी वो गति भी बनती है ना उसके साथ, गोत्र भी बन रहा है, उच्च गोत्र बन रहा है क्योंकि सम्य दृष्टि को बनते हैं। शंका, शेष कर्मों के प्रत्ययों को न कहकर केवल तीर्थंकर नाम कर्म की ही प्रत्यय प्ररूपणा क्यों की जाती है? क्योंकि जहां तीर्थंकर प्रकृति बन रही है वहां अन्य भी प्रकृतियां बन रही है, तो कहते अन्य प्रकृतियों यानी अन्य प्रत्ययों की चर्चा नहीं करते हुए मात्र तीर्थंकर नाम कर्म की प्रत्यय प्ररूपणा क्यों कही जाती है? उसका समाधान, 16 कर्म मिथ्यात्व निमित्तक है क्योंकि मिथ्यात्व के उदय के बिना इनके बंध का अभाव है। ये 16 कर्म कौन से है? नहीं, वाक्य क्या है फिर वाक्य पढ़ो। 16 कर्म मिथ्यात्व निमित्तक है, जरा शांति रखो इनको विचार करने दो। उसका अर्थ क्या है? हाँ, मिथ्यात्व में बंध विच्छित्ति होती है, वो बन रही है मिथ्यात्व में, तो वो मिथ्यात्व के कारण ही बनती है ना।
इस
16 जो बंध विच्छित्ति होती है वो मिथ्यात्व के कारण बनती है क्योंकि आगे के गुणस्थानों में नहीं बन रही है, इसलिए वो किस कारण से बन रही है? तो मिथ्यात्व के कारण से बन। हाँ उसकी, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व में तो अन्य भी बहुत सारे प्रत्यय मिथ्यात्व भी है, 16 का बहुत सारे है ना, परंतु किस कारण से बन रही है? यानी वहाँ मिथ्यात्व असंयम वो सारे कषाय योग सारे भी है, किस कारण से उनको बनती है कहेंगे हम? मिथ्यात्व के कारण, ये उसका अर्थ है। देखो फिर से पढ़ती हूँ, 16 कर्म मिथ्यात्व निमित्तक है क्योंकि मिथ्यात्व के उदय के बिना इनके बंध का अभाव है। यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंत अनुबंधी वो सारे 16 कषाय भैजू गुप्सा सब है, हमने तो वो सारे ही 53 गिने, उसमें से 55 गिने थे मिथ्यात्व में, 55 गिने थे, परंतु उसमें से ये 16 प्रकृतियों के स्पेसिफिक अगर बताना है, क्योंकि उसमें से कितने ही प्रत्यय तो ऊपर के गुणस्थानों में भी है, पर ऊपर के गुणस्थानों में वो प्रकृतियां नहीं बनती, क्यों? वहां मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए वो 16 मात्र मिथ्यात्व के निमित्तक बनती, ऐसा ये स्पेसिफिक हो गया। मिथ्यात्व गुणस्थान में अन्य प्रत्यय थे जो आगे भी वो प्रत्यय बने रहे, तो उन मिथ्यात्व में वो 16 प्रकृतियां बनती तो कहेंगे सभी इन प्रत्ययों से बनती है, परंतु आगे क्यों नहीं बनती? वो प्रत्यय तो है ना, इसलिए क्या कहेंगे? वो मिथ्यात्व से बनती। आगे ऐसा ही, 25 कर्म अनंतानुबंधी निमित्तक है। अभी इसका अर्थ समझ में आया ना? ये जो प्रकृतियों जो 25 बंध विच्छित्ति हुई दूसरे गुणस्थान में, याद है कि भूल गए? अनंतानुबंधी के तो 4 नाम ही ले लिए हैं, तो दर्शन यानी स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, 4 संस्थान 4 सहनन, फिर तिर्यंज गति तिर्यंज आयु उद्योत और नीच और तिर्यंज गत्यानुकूल नीच गोत्र बाद में लेंगे। हाँ, दुर्भग दुस्वर अनादेय त्रिवेद नीच गोत्र और अप्रशस्त विहाय गति, ये 25 प्रकृतियां। किया था, अच्छा है। तो कहते ये कैसे, अनंतानुबंधी निमित्तक। वैसे दूसरे गुणस्थान के प्रत्यय पूछेंगे तो केवल हमने मिथ्यात्व तो के 5 बात किए थे, 55 में से 5 गए, 50 बताए थे, पर 50 में से स्पेसिफिक कौन से है, तो ये अनंतानुबंधी के, क्योंकि आगे वो प्रत्यय भले चालू रहा पर ये 25 प्रकृति आगे नहीं बनती है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय के उदय के बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। ऐसे हर गुणस्थान की जो बंध विच्छित्ति है, वहां उस गुणस्थान का जो स्पेसिफिक वहां का जो कषाय वगैरह जो कुछ है उसको कहना है। 10 कर्म असंयम निमित्तक है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण के उदय बिना उनका बंध नहीं होता। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क अपने ही सामान्य उदय निमित्तक है, क्योंकि उसके बिना प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का बंध नहीं बचे। अभी इसका ख्याल में आता है ना अर्थ। 6 कर्म प्रमाद निमित्तक है, क्योंकि 6वें में जो बंध विच्छित्ति होती है आगे उनका बंध नहीं है, क्योंकि संज्वलन के निमित्त से कहेंगे तो संज्वलन आगे भी है, तो वहां उसका जो कुछ पर्टिकुलर उदय है जितने अनुभाग का उसको प्रमाद ही हमें गिना है उसको, क्योंकि प्रमाद के बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। देवायु मध्यम विशुद्धि निमित्तक है, क्योंकि अप्रमत्त काल का संख्यात्वा भाग बीत जाने पर अतिशय वृद्धि के स्थान को न पाकर मध्यम विशुद्धि स्थान में ही देवायु का बंध विच्छेद देखा जाता है, क्योंकि 7वें गुणस्थान में 6ठे से 7वें में आने वाले के ये शुरुआत में तो विशुद्धि है, बाद में तो वो और बढ़ती जाता है, तो मध्यम तक ही, क्योंकि आयु का ऐसा नियम है मध्यम परिणाम तक बनती, अति विशुद्धि में नहीं बनती है, मध्यम विशुद्धि में उसका बंध विच्छेद है। नहीं होता, 6ठे तक प्रमाद है। देखो देखो, प्रमाद पहले से 6ठे तक है, पहले गुणस्थान का प्रमाद कैसा और 6ठे का प्रमाद कैसा होगा, प्रमाद का है क्या अंतरंग में, अंतरंग में स्थिर गिना है ना, ना कहाँ कहा उसको, पुरुषार्थ क्या हुआ वहां पर, अपने आत्मा को पहचान लिया, परंतु अभी वहां जो पहले से 4थे में गया उसके असंयम है कि नहीं है, प्रमाद भी पड़ा है कि नहीं पड़ा, प्रमाद क्या है अभी जो स्वरूप में आप कहेंगे उस समय स्वरूप में स्थिरता की है ना उसको 4थे में, फिर भी वो जहां जो असंयम वगैरह जो पड़ा है उसको वो प्रमाद में गिना है, यानी वहां जो कषाय के उदय है उसको प्रमाद में गिनेंगे हम।
हाँ देखो देखो, सुनो सुनो,
नहीं नहीं नहीं, प्रमाद के कारण ऐसा नहीं। अरे अरे, वहाँ प्रमाद किसको कहना, केवल गिरने को प्रमाद नहीं कहा, प्रमाद क्या है जो अपनी सात्विक जैसे स्वरूप में स्थिर नहीं है, शुभ भाव में है, तभी उसको प्रमाद कहा। ये 4थे का भी
मैं बोलूं थोड़ा।
हाँ बोला।
देखो पुरुषार्थ ये कौन से गुण की पर्याय है, गुण की पर्याय,
वीर्य गुण की पर्याय।
एक मिनट जरा आप रुकना, वीर्य गुण की, वीर्य गुण कब से है, तो अनादि से पुरुषार्थ चल रहे कि नहीं, वो मिथ्यात्व में हुए पहले गुणस्थान में हुए या 14वें गुणस्थान में हुए या सिद्ध हुए, उनका पुरुषार्थ चालू है, तो आप क्यों उसको मना कर रही है, किसने बताया आपको पुरुषार्थ नहीं होता करके, यानी आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। आप ऐसा समझते पुरुषार्थ यानी कुछ करना धरना, वो नहीं है, स्वरूप की रचना करना, किसमें, पर्याय में, पर्याय में स्वरूप की रचना करना उसको पुरुषार्थ कहते हैं, तो पहले गुणस्थान में नहीं होता है, वो स्वरूप की रचना नहीं करता इसलिए मिथ्यात्व है, तो सच्चा पुरुषार्थ कहने जाए तो 4थे गुणस्थान से गिनेंगे, और वो 14वें गुणस्थान तक चालू है गुणस्थान की अपेक्षा से, और सिद्धावस्था में भी पुरुषार्थ है, और आगे हमने कल बताया था, कल आप नहीं आई थी ना, हाँ, पुरुषार्थ जो होता है वो यानी वीर्य गुण जो है वो 6 ही द्रव्यों में होता है, क्योंकि 5 संभव प्रत्येक द्रव्य में लगते हैं, प्रत्येक पर्याय में, यानी आप पुरुषार्थ पुरुषार्थ यानी कुछ तो भी शुभ भाव को पुरुषार्थ करना है, ऐसा जो मान्यता में बैठा है वो हटा दीजिए। पुरुषार्थ तो सिर्फ स्वरूप की रचना करने में है, और आप प्रमाद की बात कर रहे हैं, वो प्रमाद तो आपको इन्होंने अच्छी तरह से समझाया कि प्रमाद जो होता है वो गिरने के लिए प्रमाद नहीं कहते। और अभी बहन ने भी बताया ग्यारहवें गुण स्थान से जो जीव गिरता है वहां प्रमाद है नहीं, कषाय की उत्पत्ति है, रीजन है उसका, निमित्त कषायों का है, लेकिन कषाय से जीव गिरता नहीं, निमित्त से गिरता नहीं है, वो अपने स्वयं की योग्यता से गिरता है, चढ़ता भी अपनी योग्यता से, गिरता भी अपनी योग्यता से, पर के कारण कोई गिरता नहीं, न पर के कारण कोई चढ़ता है।
इन्हें पहले से चौथे में जाने वाले ने पुरुषार्थ से ही गया है, उसके ना कौन कर रहा है, उसके मना ही नहीं है यहाँ पर, परंतु वो कितना पुरुषार्थ किया, चौथे योग्य किया है कि आगे योग्य किया है, हाँ देखो आपका ये प्रश्न है। उन्होंने प्रश्न किया था कि तीर्थंकर प्रकृति बांधता है उतना पुरुषार्थ करता है, हाँ मैंने आपने बोला था तो मैंने मना कर दिया क्योंकि बंध का पुरुषार्थ नहीं कहते आपने सम्यक तो प्राप्त किया तो हम पुरुषार्थ कहेंगे, हाँ क्योंकि वो शुद्ध भाव से प्राप्त किया। नहीं वो शुभ भाव से बंध रहे, वहाँ पुरुषार्थ चल रहा है साथ में, कौन सा
शुरू,
हाँ वो साथ साथ है, शुद्ध भाव के साथ साथ है, जितना आप जितना आपका वितरागता है जो शुद्ध भाव है उतना पुरुषार्थ है, और जितना राग भाव है वो प्रमाद है, वो बंध का है, हाँ राग भाव को प्रमाद कहते हैं।
देखो आठवें गुण स्थान में
शुद्धता है, वहाँ पर
संजोलन क्रोधमान माया लोभ है ना आठवें गुण स्थान में, उसके कारण से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, पुरुषार्थ यानी शुद्ध उपयोग से नहीं बनती है। हमने इतना ही देखा कि आठवें गुण से इन्हें शुद्ध उपयोग का है और वहाँ तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, तो शुद्ध उपयोग से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, यानी अगर शुद्ध उपयोग से तीर्थंकर यानी प्रकृति का बंध होने लगा तो जीव को सिद्धावस्था ही प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सिद्धावस्था में भी उसको कुछ न कुछ कर्म बनते होंगे ऐसा मानना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब गुणस्थान का अभ्यास होगा तो ये बात आपको ख्याल में आ जाएगी।
अब ये सारे विभाव है कि स्वभाव है पहले नक्की करो, विभाव से बंद हो रहा है ना, मिथ्या तो असंयम कषाय और योग सारे विभाव है, योग भी विभाव है, और जब तक विभाव है तब तक उसका बंद है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है ना, क्या अबंद हो रहा है, बंद हो रहा है, तो बंद हो रहा है तो विभाव से बंधेगी कि स्वभाव से बंधेगी, तो विभाव करना पुरुषार्थ है क्या, नहीं है, समझ में आई बात, बन रहा है वो यथायोग्य जिन भावों से बंध रहा है बन रही है, पर वो बंध अच्छा है करना चाहिए, तो तीर्थ ये मान्यता नहीं रखनी है, जिसको बन रहा है तो बंध है, बंध ही रहा है ना, उसको सहज भाव आ रहे, सोच समझ कर कोई वो भावना भावे और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुए ऐसा तो नहीं होता, जिन्होंने बंध किया था उनके कौन से भाव थे उसकी चर्चा है, वो षोडश कारण में भी हम तो क्या हमने व्रत किया और हमने अरे व्रत आदि करना ये तो हाँ आगे बढ़ते हैं, देखो अभी आगे देखते हैं और पूछना जरूर पूछना, हाँ क्योंकि मन में ऐसे कोई संदेह पड़ा है और ऐसे कुछ अन्य स्वयं सोच के कल्पनाएं कर ली है तो ये तो भ्रम दूर होना चाहिए, ख्याल में। तो यहाँ क्या क्या बताया कि नीचे के प्रत्ययों को क्यों नहीं गिना, ये प्रश्न था उनका, तो उन्होंने बताया 16 कर्म मिथ्यात्व के निमित्त से बनती है, जो 25 कर्म जो है प्रकृतियां वो अनंतानुबंधी निमित्तक बनती है, 10 जो है वो असंयम निमित्त ने प्रत्याख्यानावरण में बनती है, प्रत्याख्यानावरण के उदय में प्रत्याख्यानावरण बन रहे हैं, और छह कर्म जो प्रमाद निमित्तक है, ये यहाँ से बात है। वहाँ जितना वो राग भाव है, वहाँ अरति शोक वगैरह बन रही ना, वहाँ तो हास्य रति भी बनती है, परंतु ये अन्य भी बन सकती है, क्योंकि वहाँ भी तरतमता होती है ना भावों में, एक समान एक सदृश भाव नहीं है। उसमें भी कभी छठे के योग्य संकलेश विशुद्धि होती है तो छठे के योग्य संकलेश में अरति शोक बंधेगी और यशस कीर्ति बंधेगी। वो जो छह की बंधे हुई चित्ती बताई उसकी बात है, ये तो हमने पूरा पढ़ लिया था। और देवायु भी मंद विशुद्धि में बनती, वो भी हमने देखा था। अब लास्ट शब्द वास का आहार द्विक, विशिष्ट राग से संयुक्त संयम के निमित्त से बनता है। आहार द्विक कहाँ कहाँ बनती हमने देखा था, सातवें आठवें में। ये आहार का नाहारक की बात नहीं है, आहार शरीर और अंगोपंग का बंध तीर्थंकर प्रकृति के पहले उसकी बात देखी थी हमने, निकालो पेज 72। प्रत्येक संयमी को बनती है क्या, छठे सातवें में तो हर मुनिराज जो छठा सातवा कर रहे हैं, तो हर एक को क्या सातवें में आहार प्रकृति बनती है, तो नहीं बनती है। किसको बनती है तो यहाँ क्या लिखा था देखो, आहार के प्रत्येक कौन से पूछा गया था, लास्ट पैराग्राफ 72 पेज पर, तीर्थंकर आचार्य बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय और प्रवचन इनमें अनुराग करना आहार द्विक का कारण है। वो बताया था ना, इसको स्पेसिफिक कुछ कारण बताए थे, यानी छठे सातवें के योग्य वहां तो राग भाव सबको चलेगा, परंतु उसमें भी कुछ विशिष्ट राग है उसकी बात यहाँ बताई। अब यहाँ कहते हैं देखो आहार, अपने पेज पर आना 77 पर, आहार द्विक विशिष्ट राग से संयुक्त संयम के निमित्त से बांधता है, यानी संयमी को जो पर्टिकुलर राग है, तीर्थंकर आचार्य वगैरह बहुशत उनकी उस संबंधी बात बताई ना उनके, उनका राग जो है उनका अनुराग, क्योंकि ऐसे संयम के बिना उसका बंध नहीं पाया जाता। केवल संयम नहीं लिया, संयम प्लस उनके प्रति अनुराग। परभव निबंधक यानी परोभव संबंधी बंधी गई 27 कर्म एवं हास्य रति भय जुगुप्सा पुरुष वेद और 4 संज्वलन कषाय, ये सब कर्म कषाय विशेष के निमित्त से बंधने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना उनके भिन्न स्थानों में बंध विच्छेद की उत्पत्ति नहीं बनती।
लिए
28
लेना चाहिए ना, क्या 28 बद्धक 27 कर्म देवगति युक्त 28
वो देवगति सहित वाले लिए ना, यशबीना यशबीना देवगति युक्त फिर से परभव निबंधक 27 कर्म एवं हास्य रति भय जुगुप्सा पुरुष वेद और 4 संज्वलन कषाय, ये सब कर्म कषाय विशेष के निमित्त से बंधने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना उनके भिन्न स्थानों में बंध विच्छेद की उपपत्ति नहीं बनती। यानी ये सभी यहाँ पर बंध विच्छित्ति होती है उसकी बात है। सोलह कर्म कषाय सामान्य के निमित्त से बंधने वाले हैं, क्योंकि अणुमात्र कषाय के भी होने पर उनका बंध पाया जाता है। दसवीं गुण स्थान में ये अलग अलग लिया है, एक जगह सबको नहीं लेना। हास्यरती भैजुगुप्सा 8वें है, पुरुष वेद 9वें के स्टार्टिंग में है, 4 संज्वलन अलग अलग जगह है, यानी ये सबको इकट्ठा इसलिए किया है, वो अलग अलग जगह विशिष्ट कषाय के उदय से बनती है, बस इतना ही। यानी सबको इकट्ठा एक जगह में बंद विच्छेद मत ले लो। यानी ये 27 है जो हमने देखा था, आठवें के छठे भाग, हासरती भाई जी गुप्सा आठवें के अंत में, पुरुषवेद नवे के स्टार्टिंग पहला भाग, फिर एक एक संज्वलन एक एक भाग में उसका नवे के अंत तक। इसलिए कषाय विशेष का निमित्त बताया, क्योंकि सब में तो संज्वलन है परंतु उसका अनुभाग का विशेष है, इसलिए भिन्न स्थानों में बंध विच्छेद होता है। समझ में है इसका अर्थ? समझ में है? 16 कर्म ये 10वें गुण स्थान वाले कषाय सामान्य के निमित्त से बंधने वाले हैं, क्योंकि अनुमात्र कषाय के भी होने पर उनका बंध पाया जाता है। मैंने पहले से लेकर वो सब बनते आए, फिर भी जब तक कषाय तब तक उसका बंध है। सातावेदनीय योग निमित्तक है, क्योंकि सूक्ष्म योग में भी उसका बंध पाया जाता है। सूक्ष्म योग में भी क्यों कहा? क्योंकि केवल अंतिम समय में अंतिम अंतन मुहूर्त में योग का सूक्ष्म पुष्टि करते हैं, यानी योग बादर योग से सूक्ष्म योग हो जाता है, फिर भी सातावेदनीय का बंध है अंतिम समय तक है, इसलिए हाँ सूक्ष्म कृष्टि यानी योग की कृष्टि, इसको सूक्ष्म योग कहा, यानी वहां भी उसका बंध है, इसलिए उसको योग निमित्त कह दिया। नीचे तो बंध है, हमने तो उसको गिने भी थे, पहले गुणस्थान में कौन से प्रत्यय, दूसरे गुणस्थान, पर बिल्कुल स्पेसिफिक बताना है, क्योंकि 13वें गुणस्थान में अन्य कोई भी नहीं, फिर भी ये बन रहा है, इसलिए कहते वो योग निमित्तक है। इस प्रकार चूंकि सब कर्मों के प्रत्यय युक्ति बल से जाने जाते हैं, अतः उनका यहाँ कथन नहीं किया, बाकी की बात अभी यहाँ नहीं बताए, किंतु इस तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रत्यय नहीं जाना जाता, कारण कि यह मिथ्यात्व निमित्तक बनता नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के होने पर उसका बंध नहीं पाया जाता। इसलिए हमने देखा था कि जो दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला है वो मिथ्यात्व में जाता है, मिथ्यात्व में जाते ही अंतर्मूर्त तक उसका बंध रुक जाता है, ऐसा नहीं कि नरक गति भी बांध रहा हो और तीर्थंकर भी बांध रहा, ऐसा नहीं होता उसका। असंयम निमित्तक भी नहीं बनता, क्योंकि संयतों में भी उसका बंध देखा जाता है। आप कहेंगे असंयम के कारण बनता है, नहीं नहीं, संयमी भी तो बांधते हैं, उनके तो असंयम है ही नहीं है। कषाय सामान्य निमित्तक भी वह नहीं बनता, क्योंकि कषाय के होने पर भी उसका बंध विच्छेद देखा जाता है, यानी बाद में कषाय है और फिर भी उसका बंध नहीं है, आठवें में बंध विच्छेद हुए, बाद में कषाय है पर इसका बंध रुक गया है, अथवा कषाय के होने पर भी उसके बंध का प्रारंभ नहीं होता, यानी सब जीवों में नहीं हो रहा है, चौथे से सातवें तक बंध का शुरुआत हो जाती है और आठवें तक बनती रहती है, समझो कहीं से भी बंध शुरू हुआ हो वहां तो कषाय है, सबको बंध नहीं है, किसी किसी को है। कषाय मंदता निमित्तक भी इसका बंध नहीं होता, यानी शुभ भाव से होता होगा, क्योंकि तीव्र कषाय वाले नारकियों के भी उसका बंध देखा जाता है। अब तीसरे नरक के नारकी को उनके योग्य वहां कषाय चल रही होगी ना, भले वो समय दृष्टि है अप्रत्याख्यानावरण है, परंतु वहां तीव्र उदय है उसका, उसके योग्य चौथे के योग्य, तो उसके तीव्र कषाय कहेंगे हम उनको, तो उनके भी बंध हो रहा है, तीव्र कषाय भी इसके बंध का कारण नहीं है, क्योंकि मंद कषाय वाले सर्वार सिद्धि विमानवासी देवों और अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीवों में भी उसका बंध देखा जाता है। आप कहेंगे मात्र मंद कषाय से बनती है, तो सर्वार सिद्धि में भी उसका बंध है और नारकियों के भी है, इसलिए तीव्र कषाय से बनते ऐसा भी नहीं कहेंगे, मंद कषाय से बनते ऐसा भी नहीं कहेंगे, सम्यक तो भी उसके बंध का कारण है। क्या कहा? सम्यक दर्शन तो बंध का कारण है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टियों में भी तीर्थंकर कर्म का बंध नहीं पाया जाता, सभी सम्यक दृष्टियों में नहीं पाया जाता, इसे सम्यक तो हुआ इसलिए बंध हुआ ऐसा भी नहीं है। केवल यानी ओनली मात्र दर्शन विशुद्धता भी उसका कारण नहीं है, क्योंकि दर्श विशुद्धि आदि 16 नाम जो है तीर्थंकर प्रकृति के षोडश कारण जिसको कहेंगे भावना, तो अकेला वो भी उसका कारण नहीं है, क्योंकि दर्शन मोह का क्षय कर चुकने वाले भी किन्हीं जीवों के उसका बंध नहीं पाया जाता। क्या सारे क्षयिक समय दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति बनती है? नहीं, दर्श विशुद्धि तो है ही उनके। दर्श विशुद्धि का अर्थ क्या है? दर्शन यानी समय दर्शन में विशिष्ट वृद्धि होगी, यानी उसको अतिचार रही जो कुछ है वहां पर उसकी विशुद्धि है। तो क्षायिक की तो कितनी दर्शन विशुद्धि है, तो मात्र क्षायिक है इसलिए बंध है ऐसा भी नहीं है। अतएव इसके बंध का कारण कहना ही चाहिए, यानी कुछ स्पेसिफिक है उसके कारण। अथवा वो अथवा असंयत प्रमत्त और सयोगी संज्ञाओं के समान यह सूत्र सब कर्मों की प्रत्यय प्ररूपणा में अंत दीपक है, इसीलिए यह सूत्र आया है। क्या कहना चाहते हैं? अंत दीपक समझते हैं? हाँ, वो लास्ट में बताया सब पहले वालों को लागू होता है। जैसे हमने कहा नमो लोए सौव साहूणम, तो लोए और सौव सब जगह नहीं कहा, तो उसका अर्थ क्या है? नमो लोए सौव अरिहंताणम, नमो लोए सौव सिद्धानम, हर एक पद के लिए वो लागू होता है। अब जो असंयत पद है, असंयत समय दृष्टि है, तो असंयत पद कहाँ कहाँ लागू होता है? वो अंत दीपक है। चौथे वाले को असंयत कहा, उसका अर्थ क्या है? पहले दूसरे तीसरे चौथे सारे असंयत है। फिर कहते प्रमत्त, प्रमत्त संयत ये नाम है उसका, उसमें दो शब्द है प्रमत्त और संयत, तो यहाँ तक के सारे प्रमत्त है और यहाँ से आगे सारे संयत है, यानी इसमें से प्रमत्त शब्द अंत दीपक है और संयत शब्द आदि दीपक है। गुणस्थान का नाम है ना, यहाँ तक प्रमत्त है, वो प्रमत्त वाले का अंतिम गुणस्थान है और संयमियों में से ये पहला गुणस्थान है। छठा सातवां चौदहवें तक सारे संयत कहेंगे। और कौन कौन सा अंत दीपक है? सयोगी, सयोगी यानी पहले से लेकर तेरहवें तक के सारे सयोगी ही है। वो केवली कहा, सयोग केवली, सयोगी यह अंत दीपक है और केवली यह आदि दीपक है, क्योंकि चौदह वाला भी केवली है। अरे गुणस्थान में हम वो ऐसा लागू करेंगे ना, तो जैसे वो नाम है कैसे वो सारे अंत दीपक है, तो यह सूत्र सब कर्मों की प्रत्यय प्ररूपणा में अंत दीपक है, इसलिए यह सूत्र आया है। तीर्थंकर प्रकृति का अलग से क्यों बताया है? तो सभी में यह अंत दीपक समझना। कितने कारण से? क्या एक से, क्या दो से, क्या तीन से? इस प्रकार यहाँ पूछा करनी चाहिए। कितने कारणों से पूछा ना, तो उसको गिनना चाहिए। इस प्रकार के संशय में स्थित जीवों के निश्चय उत्पादनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। ये कारणों को गिनाने के लिए अभी सूत्र कहेंगे। तथ्य इमे ही सोलये ही कारणे ही जीवा तिथ्यर नाम गोदकम्मम बंधंती। वहाँ इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। अब ये किसको बनते हैं, क्या है उसके कंडीशंस बताएंगे। मनुष्य गति में ही तीर्थंकर कर्म के बंध का प्रारंभ होता है अन्यतने। एक बार प्रारंभ होने पर वो नारकी को भी बनती रहती है, देव को भी, पर प्रारंभ कहाँ करते हैं? मनुष्य गति, वो कर्म भूमि का। अन्यत्र नहीं, इस बात के ज्ञापनार्थ सूत्र में वहाँ ऐसा कहा गया है। शंका, मनुष्य गति के सिवाय अन्य गतियों में उसके बंध का प्रारंभ क्यों नहीं होता? समाधान, इस शंका के उत्तर में कहते कि अन्य गतियों में उसके बंध का प्रारंभ नहीं होता, कारण तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के प्रारंभ का सहकारी कारण केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य है। अतः मनुष्य गति के बिना उसके बंध प्रारंभ की उत्पत्ति का विरोध है। अथवा अथवा कह के दूसरी बात बता रहे, उनमें तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के कारणों को कहते हैं, यह अभिप्राय है। 16 इस प्रकार कारणों की संख्या का निर्देश किया गया है। पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर एक भी कारण होता है, दो भी होते हैं, इसलिए यहाँ 16 ही कारण होते हैं ऐसा उदाहरण नहीं करना चाहिए। 16 तो बता दिए, 16 में से दो चार ही हो जाए, एक ही होगा, दो ही होगा, ये भी हो सकता है। इसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं, ये 16 नाम बताएंगे, अभी उसमें से कुछ कारण हो सकते हैं, सभी भी हो सकते हैं, वो 16 नाम अभी हम पढ़ेंगे। दंशन विशुद्ध दाये, विनय संपन्न दाये, शीलवदेशु निरदिचार दाये, आवासेशु अपरिहीन दाये, खनलव परिबुज्जन दाये, लद्धि संवेग संपन्न दाये, जधा थामे तधा तवे, साहुणम पासु अपरिचाग दाये, साहुणम समाहि संधारण दाये, साहुणम वेज्जावच्च जोग जुत्त दायी, अरहंत भत्ती, बहुसुद भत्तीये, पवेन भत्तीये, पवेन वच्छल दाये, ये पवयन करो, पयवन हुआ है, पवयन पभावन दाये, अभिक्षणम अभिक्षणम नानो व जोग जुत्त दाये, इच्छे देही सोलही कारणे ही जीवा तिथयर नाम गोदम कम्मम बंधंती। हिंदी में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। दर्शन विशुद्धता, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में निरतिचारता, यानी अतिचार रहितता, छह आवश्यकों में अपरिहीनता, क्षणलव प्रतिबोधनता, लब्धि संवेग संपन्नता, यथाशक्ति तप साधुओं को प्रासुक परित्यागता, साधुओं की समाधि संधारणता, साधुओं की वैयावृत्य योग युक्तता, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावना प्रभावनता और अभिक्षण अभिक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता। इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। अब उसका एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। इस सूत्र का अर्थ कहते हुए इस प्रकार है, दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन है, वो देव का दर्शन करते उठते ही वो दर्शन वाली बात नहीं लेना है, ऐसा समझते हैं लोग। अरिहंत भक्ति आगे है, वो बात अलग है, वो मुंह से भक्ति बोलना वो भी नहीं है। अरे गुण नहीं है और गुण का पता नहीं है तो भक्ति क्या करेंगे, ख्याल में आई ना। तो दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, उसकी विशुद्धता का नाम दर्शन विशुद्धता है। उस दर्शन विशुद्धता से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। अब वो सम्यक दर्शन किसको कहेंगे, तीन मूर्ताओं से रहित। ये तीन मूर्ता कौन से है, ब्रह्मा, हाँ, देव मूर्ता, देव संबंधी मिथ्या मान्यता, मूर्ता ने मूर्खता, ये रागी द्वेषियों को देव मानना वो क्या है, देव मूर्ता है। गुरु मूर्ता क्या है, वस्त्र सहित को गुरु मानना, ये गुरु मूर्ता हो गई। अभी जो अन्य अन्य जो रागी द्वेषी वो सबको परिग्रह सहित गुरु को गुरु मानना, ये गुरु मूर्ता। गुरु अंतर बाह्य होता है, अंदर से गुरु और बाह्य से कपड़ा नहीं हो सकता। गुरु है ना दिगंबर मुनिराज, मुनि को यहाँ गुरु कहा है, ये हमारे विद्या गुरु, स्कूल के गुरु, आध्यात्मिक गुरु, वो उसको गुरु नहीं कहा यहाँ पर। और उनका भी निर्णय तो पहले होना चाहिए, क्योंकि वो ठीक पढ़ा बराबर आगम के अनुसार है कि क्या हो रहा है, चाहे जिसको हमने गुरु मान लिया, गुरु कह दिया, वो हमारा गुरु नहीं होता है। उस संबंधी जो मिथ्या मान्यता है उससे रहित पना होगा तो गुरु मूर्ता से, ये सम्यक तो की आवश्यक कंडीशन है, देव मूर्ता से रहित होना चाहिए। गुरु संबंधी जो मूर्ख मान्यता है मूर्ता है उससे रहित होना ही चाहिए। और तीसरी लोक मूर्ता, लोक में भी अनेक मूर्ताएं चलती है, तो ये कर हाँ वो तो क्या लोक मूर्ता चलती है ना, वो वृक्षों को भी नमस्कार करेंगे और क्या क्या करेंगे, पवित्र ये गंगा में डुबकी लगाने से हमारा उद्धार हो जाएगा मानेंगे, ये क्या सब लोक मूर्ता है, बहुत सारी चलती है।
देखो यहाँ गुरु जो कह रहे हैं, गुरु कहने से जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज है, जो निर्ग्रंथ और निष्परिग्रही है, उनको गुरु कहेंगे। शिक्षा गुरु या अपने क्या बोलते हैं
विद्या गुरु,
आगम की बात भी बताएंगे, विद्या गुरु है उनको भी गुरु नहीं कहेंगे। ये गुरु यानी मुनिराज जो होते हैं वो
देव गुरु शास्त्र वाले गुरु, उसको गुरु कहेंगे।
आप जो कह रही है
केवल कपड़े नहीं, इसलिए नहीं, अंतरंग में उतनी तीन कषाय की अभाव पूर्वक वितरकता भी होनी चाहिए, वो गुरु है। और ऐसे ही गुरु होते हैं, अंतरंग और बहिरंग पूरा स्वरूप अपने बुद्धि में निर्णय करना है। आप कहेंगे ऐसे कहाँ दिखते हैं, नहीं ना दिखने दो, आप तो अपने अंतरंग चक्षु से उनको देखना चाहिए कि ऐसे ही गुरु होते हैं। अरे किसी को तो गुरु करना चाहिए, नहीं तो हमारा भला ये नहीं बात। तो अभी कोई तीर्थंकर और देव नहीं है, किसी को भी देव कर दो क्या, किसी को भी देव मानते हो क्या आप, नहीं मानते। ऐसा ही गुरु के बारे में होना, इतने निशंक प्रतीति हुए बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा। अंतरंग में छठे सातवें में है तो कपड़ा हो नहीं सकता, वस्त्र का धागा भी नहीं हो सकता, नहीं होगा। गृहस्थ होगा पूरे कपड़े के साथ, अरे राजा का वैभव के साथ होगा, पर सम्य दृष्टि हो सकता है। पर अगर मुनि पद धारण किया है और बाह्य में कोई वस्त्र का धागा लगते कि अन्य परिग्रह रखते, मोबाइल रखते, नहीं मानने का, उसको मुनि यानी गुरु नहीं कहे, देव गुरु वाले गुरु नहीं है।
देखो देव शास्त्र गुरु में से जो गुरु है वो गुरु सिर्फ नग्न दिगंबर मुनिराज ही होंगे, बाकी हम अपने
हाँ वो हम उनके हमारे आगम का अभ्यास करने के लिए कोई भी आपको गुरु जी जिसको कहेंगे वो वैसा वाला गुरु, वो गुरु वाला गुरु नहीं।
कांजी स्वामी को भी गुरु कहते, परम गुरु कहते हैं, वह तो शिक्षा गुरु है, वो गुरु नहीं है।
अरे बिल्कुल नहीं, वो चौथे वाले थे, वो स्वयं कहते थे मैं चौथे गुणस्थान वाला अविरत सम्य दृष्टि असंयमी हूँ, इतना सब आचरण करते हुए भी असंयमी सर। गुरु है ना वो देव मुनि वाले गुरु नहीं, उसको मुनि नहीं मानना। हाँ देव गुरु वाले गुरु है ना मुनि, और यहाँ गुरु है ना गुरु जी, शिक्षा गुरु।
देखो एक बात ध्यान रखना, कपड़े सहित जो होगा वो गुरु हो ही नहीं सकता है।
गुरु है ना मुनि को लेना, यहाँ मुनिराज जिनको कहेंगे हम, देव गुरु शास्त्र वाले जब गुरु की शब्द बातें आती है तो हम मुनिराज को लेना है, और वो नग्न दिगंबर ही होते हैं, अन्यथा वो मुनि होते ही नहीं, उनके छठा सातवां गुणस्थान हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे हमारे कुछ कपड़े के सहित मुनि है, मुनि मान रहे, उनका चौथा तो गुणस्थान होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये नक्की करना है। कैसे होगा, कैसे होगा, पर वो गृहस्थ है क्या, वो अपने को मुनि मान रहे, उनकी मान्यता ही गुरु संबंधी गलत है, वो मुनि क्यों कहला रहे और अन्य भी उनको मुनि क्यों कह रहे हैं। वो दिगंबर मुनि करके उसने रूप धारण किया है, और वो कौन से देव को मान रहे हैं, कपड़े सहित देव को देव मान रहे हैं। अरे गुरु को कपड़ा नहीं हो सकता, देव को कैसे होगा, बिल्कुल जिनकी देव की मान्यता रॉन्ग है उनको सम्य दर्शन ही नहीं है। अब वो मुनि तो बहुत आगे की बात है, ख्याल में आते हैं। अब उनको ऐसे लोगों को हम गुरु मान रहे, भले विद्या गुरु मान रहे, वो भी गलत है कि नहीं, क्योंकि जिनकी देव संबंधी गुरु संबंधी मान्यता गलत है, ऐसे जीवों को हम अध्यात्म के गुरु मान रहे हैं, वो भी बात गलत है। वो तो आप मान रहे तो उसे मानने से थोड़े होंगे वो, बिल्कुल नहीं है। ये तो हमें निर्णय करना चाहिए। खाली किसी को सम्यक्ता सम्यक्ता कहने से कुछ होने वाला है क्या? नहीं, चौथे पांचों वाले को अर्घ्य नहीं, ना उनकी आरती होती है, वो तो बात अलग है। अभी बाकी हम चर्चा कल करेंगे। वैसे तो प्रश्न पूछना कोई है, मन में संदेह मत रखना, क्योंकि सम्यक्त्व का अर्थ है निशंक प्रतीति, और ये संशय सहित डामाडोल चलेगा वो सम्यक दर्शन कैसे होगा?
लोग क्या कहेंगे? हम नहीं गुरु,
बिल्कुल ऐसा ठोस चाहिए निर्णय, अपनी जो प्रतीति है, अपनी श्रद्धा, कि बिल्कुल डिगे नहीं कोई सामने से आगे कैसा भी, भले पूरी दुनिया एक बाजू हो जाए, फिर अपनी मान्यता में कहीं इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। समाज क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, हमारा माँ बाप क्या कहेंगे, अरे वो भी इससे विरुद्ध कहेंगे तो भी हम उसको नहीं मानेंगे। चलो यही रुकेंगे हम, कल इसकी चर्चा करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।